वाक्य विश्लेषण। किसी भी वाक्य का सम्यक अध्ययन करने के लिए जहाँ उसके निकटस्थ अवयवों का जानना अत्यंत आवश्यक होता है, वहाँ उसके विविध पदों के व्याकरणिक संबंध को समझना भी नितांत आवश्यक माना गया है। इस व्याकरणिक संबंध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी भी वाक्य के पदों का विभाजन किया जाता है, और यदि किसी वाक्य में कोई उपवाक्य होते हैं तो उन उपवाक्यों का भी विभाजन किया जाता है। इस प्रकार पदों एवं उपवाक्यों का सम्यक विभाजन करके किसी वाक्य का जो अध्ययन किया जाता है उसे वाक्य विश्लेषण कहते हैं। पहला, वाक्य का विभाजन। साधारणतया प्रत्येक वाक्य को सर्वप्रथम दो भागों में विभाजित किया जाता है। उसमें से एक भाग को उद्देश्य और दूसरे को विधेय कहते हैं। इनमें से जिसके विषय में वाक्य में के अंतर्गत कुछ कहा जाता है उस वाचक पद को उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, श्याम गीत खेलता है और सीता गाना सीखती है। इन तीनों वाक्यों में राम, श्याम और सीता तीनों ही उद्देश्य हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसके वाचक पदों को विधेय कहते हैं। जैसे उक्त वाक्यों में क्रमशः रोटी खाता है, गेंद खेलता है और गाना सीखती है पद विधेय है, क्योंकि इसमें उद्देश्य के विषय में कहा गया है। क, उद्देश्य का विभाजन। प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य का विभाजन पुनः दो भागों में किया जाता है, पहला कर्ता और दूसरा कर्ता का विस्तार। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में राम तो कर्ता है किंतु राम से संबंधित दशरथ के पुत्र पदों को कर्ता का विस्तार कहा जाएगा। ख, विधेय का विभाजन। जिस प्रकार उद्देश्य का विभाजन दो भागों में किया जाता है उसी प्रकार विधेय को 14 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला कर्म, दूसरा कर्म का विस्तारक, तीसरा करण, चौथा करण का विस्तारक, पांचवां संप्रदान, छठा संप्रदान का विस्तारक, सातवां अपादान, आठवां अपादान का विस्तारक, नौवां अधिकरण, दसवां अधिकरण का विस्तारक, ग्यारहवां पूरक, बारहवां पूरक का विस्तारक, तेरहवां क्रिया और चौदहवां क्रिया का विस्तारक। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने लंका अधिपति रावण को बुरी तरह मारा। इस वाक्य में रावण को कर्म है, लंका अधिपति कर्म का विस्तारक, मारा क्रिया है और बुरी तरह क्रिया का विस्तारक है। दूसरा, उपवाक्यों का विभाजन। साधारणतया वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य में तो कोई उपवाक्य होता नहीं क्योंकि उसमें एक ही क्रिया होती है, किंतु संयुक्त वाक्य में दो से अधिक उपवाक्य होते हैं और वे सभी प्रधान होते हैं, तथा मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है जबकि शेष उपवाक्य गौण होते हैं। इन गौण उपवाक्यों का विभाजन तीन भागों में किया जाता है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे इतिहास बताता है कि आर्य भारत के ही निवासी थे। इस वाक्य में इतिहास बताता है तो मुख्य उपवाक्य है, जबकि आर्य भारत के निवासी थे संज्ञा उपवाक्य है। ऐसे ही वह कौन सा मनुष्य है जिसने सम्राट अकबर का नाम न सुना हो। इस वाक्य में वह कौन सा मनुष्य है तो मुख्य उपवाक्य है, जबकि जिसने सम्राट अकबर का नाम न सुना हो विशेषण उपवाक्य है। इसी तरह यदि आप आज्ञा दें तो हम पुष्प वाटिका देखाएं। इस वाक्य में यदि आप आज्ञा दें, यहाँ मुख्य उपवाक्य है, और तो हम पुष्प वाटिका देखाएं, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। वाक्य के भेद। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है और संसार के विविध समाज अपनी भाषा का प्रयोग विविध रीति से करते हैं। कोई अपनी भाषा में योगात्मक वाक्यों का प्रयोग करता है तो कोई अयोगात्मक, कोई श्रेष्ठ योगात्मक वाक्यों का प्रयोग करता है तो कोई प्रश्रेष्ठ योगात्मक वाक्यों का, कोई सरल वाक्यों का प्रयोग करता है तो कोई मिश्रित एवं संयुक्त वाक्यों का, कोई भाव या अर्थ के आधार पर प्रश्न सूचक, आज्ञा सूचक आदि वाक्यों का प्रयोग करता है तो कोई निश्चयार्थ सूचक, निषेधात्मक आदि वाक्यों का, और कोई क्रियायुक्त वाक्यों का प्रयोग करता है तो कोई क्रियाहीन वाक्यों का भी प्रयोग करता है। इस प्रकार विभिन्न आधारों पर वाक्य के विविध भेद हो जाते हैं। वाक्यों का भेद जानने के लिए मुख्यतया निम्नलिखित पांच आधार अपनाए जाते हैं। क, रचना के आधार पर। ख, आकृति के आधार पर। ग, अर्थ के आधार पर। घ, क्रिया के आधार पर। ङ, शैली के आधार पर। क, रचना के आधार पर। वाक्य रचना अथवा व्याकरणिक गठन के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला, साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है, अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन आता है, इस वाक्य में मोहन कर्ता है, उद्देश्य है तथा आता है क्रिया एक विधेय है। दूसरा, संयुक्त वाक्य। इस वाक्य में दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य रहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन आता है, सोहन जाता है और सीता उन्हें देखती है। यहाँ तीन उपवाक्य एक साथ आए हैं जो सभी प्रधान हैं। तीसरा, मिश्र वाक्य। इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष दो या दो से अधिक संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य रहते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए आवश्यक सिद्धांत यह है कि सबको अपना अपना कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिले, ताकि किसी को कुछ कहने की गुंजाइश न रहे। इसमें तीन उपवाक्य। पहला, समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए आवश्यक सिद्धांत यह है, साधारण वाक्य। दूसरा, कि सबको अपना अपना कर्तव्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिले, ये संज्ञा उपवाक्य। और तीसरा, ताकि किसी को कुछ कहने का अवसर न मिले, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अतः उक्त वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। ख, आकृति के आधार पर। वाक्यों की आकृति तथा वाक्य विन्यास के आधार पर वाक्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, अयोगात्मक वाक्य और योगात्मक वाक्य। किंतु योगात्मक वाक्य पुनः तीन प्रकार के होते हैं, श्लिष्ट योगात्मक वाक्य, अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य और प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य। इस प्रकार आकृति या वाक्य विन्यास के आधार पर वाक्य के चार भेद हो जाते हैं। पहला, अयोगात्मक वाक्य। इस वाक्य में पदों का निर्माण प्रकृति प्रत्यय के योग से नहीं होता, अपितु जिसके सभी पद स्वतंत्र होते हैं और स्थान से ही जिनके व्याकरणिक संबंध का बोध होता है, वे अयोगात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे चीनी भाषा के वाक्य नो गात न्यो तानी, मैं तुमको मारता हूँ, तथा नितानगो, तुम उसको मारते हो। दोनों वाक्यों के सभी पद प्रकृति प्रत्यय रहित हैं और केवल स्थान की ही व्याकरणिक संबंध का बोध करा रहा है। दूसरा, श्लिष्ट योगात्मक वाक्य। जिस वाक्य में पदों का निर्माण विभक्तियों के योग से होता है, वह श्लिष्ट योगात्मक वाक्य होता है। ऐसे वाक्य में कभी विभक्तियां शब्द के बाहर की ओर लग जाती हैं और कभी अंदर की ओर भी लगती हैं। संस्कृत भाषा में प्रायः वाक्यों के अंतर्गत सभी पद बाह्य विभक्तियों द्वारा ही बनाए जाते हैं, जैसे राम ग्रामम गच्छति। किंतु अरबी भाषा में अंतर्मुखी विभक्तियों का प्रयोग होता है, जैसे जैदुन अमरन जरब, जैद ने अमर को मारा। तीसरा, अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य। जिस वाक्य में पदों का निर्माण प्रत्ययों के योग से होता है, वह अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्यों के पदों में पूर्व, मध्य, अंत आदि सभी स्थानों पर प्रत्ययों का योग होता रहता है। जैसे तुर्की भाषा में सेव एर इम, मैं प्यार करने वाला हूँ, वाक्य अंतर्गत सेव के आगे प्रत्यय जोड़ने से वाक्य बना है। ऐसे ही अफ्रीका के बंतु परिवार की जुलू भाषा में प्रायः शब्द के पूर्व में ही प्रत्यय लगाने पर वाक्य के भेद बनते हैं, जैसे उमुंतु बेतु अमोच्चे वे बोनकल, हमारा आदमी देखने में सुंदर है। वाक्य में तू यानी हमारा, चिल यानी सुंदर, यवोनकल यानी दिखाई पड़ता है तो शब्द है, किंतु इसके पूर्व प्रत्ययों के लगने से इन्हें वाक्य के लिए पद बनाया गया है। चौथा, प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य। जिस वाक्य के अंतर्गत कई शब्दों के योग से एक ऐसा सामाजिक पद बन जाता है कि वह पद की एक वाक्य का बोध कराता है, उसे प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका की चेरोकी भाषा में ऐसे ही वाक्य मिलते हैं, जैसे नादोलिन, हमारे पास नाव लाओ, वाक्य का निर्माण नातेन यानी लाओ, अमोखोल यानी नाव और निन, हम तीन शब्दों के योग से हुआ है, अतः यह एक प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य है। ग, अर्थ के आधार पर। अर्थ वृत्ति या भाव के आधार पर वाक्य के नौ भेद होते हैं। पहला, विधि वाक्य, जैसे लड़का आता है। दूसरा, निषिद्ध वाक्य, जैसे लड़का नहीं जाता है। तीसरा, आज्ञार्थक वाक्य, तुम यहाँ से जाओ। चौथा, इच्छार्थक वाक्य, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दें। पाँचवा, संभावनार्थक वाक्य, शायद लड़का आ जाए। छठा, संदेहार्थक वाक्य, लड़का आज आता होगा। सातवां, प्रश्नार्थक वाक्य, क्या आज लड़का आएगा। आठवां, विस्मयादिबोधक वाक्य, हाय वह बड़ी जल्दी मर गया। नौवां संकेतार्थक वाक्य, लड़का यहाँ आता तो मैं वहाँ जाता। घ क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर वाक्य दो भेद होते हैं, क्रियायुक्त वाक्य और क्रियाहीन वाक्य। पहला क्रियायुक्त वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्रियायुक्त वाक्य कहते हैं। प्रायः अधिकांश वाक्यों में क्रिया का प्रयोग अवश्य होता है, जैसे राम सोता है, मोहन खेलता है, सीता आई आदि वाक्यों में सोता है, खेलता है, आई आदि क्रियाएँ हैं जिनके योग से उक्त वाक्य बने हैं। दूसरा क्रियाहीन वाक्य, जो वाक्य बिना क्रिया के ही अपने पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें क्रियाहीन वाक्य कहते हैं। बातचीत के समय कभी कभी वक्ता एक क्रियाहीन पद द्वारा ही पूरे वाक्य का उच्चारण कर देते हैं, जैसे राम सोहन तुम दिल्ली कब जाओगे, सोहन कल। उक्त वाक्य में कल एक ही पद पूरे वाक्य का बोधक है जिसमें किसी भी क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे ही हिंदी में कितने ही ऐसे मुहावरों का प्रयोग होता है जो क्रियाहीन वाक्य के रूप में आते हैं और पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, आम के आम गुठलियों के दाम, हाथ कंगन को आरसी क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऊंट के मुंह में जीरा, मान न मान मैं तेरा मेहमान, नई नाइन बांस का नहन्ना, चुचंदर के सिर में चमेली का तेल आदि। कुछ पदों का प्रयोग घबराहट आश्चर्य भय शोक आदि के अवसर पर इस प्रकार किया जाता है कि एक ही पद बिना क्रिया के पूरे वाक्य का काम करता है, जैसे शीर, आग, हाय, सांप, वाह, हत्या आदि। अंगम शैली के आधार पर, स्थूल दृष्टि से विचार करने पर शैली के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला शिथिल वाक्य, जिन वाक्यों के अंतर्गत वक्ता बिना किसी अलंकरण का सहारा लिए हुए सीधे साधे ढंग से अपने विचार व्यक्त करता है वे शिथिल वाक्य कहलाते हैं, जैसे श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए थे, मथुरा से उन्हें वासुदेव गोकुल में ले गए, गोकुल में कृष्ण गाय चराते थे आदि आदि। दूसरा समीकृत वाक्य, जिन वाक्य के अंतर्गत वक्ता साम्य मूलक या वैषम्य मूलक संगति द्वारा अपने मनोभावों को व्यक्त करता है उन्हें समीकृत वाक्य कहते हैं, जैसे जो सेवा करता है सो मेवा पाता है, यथा राजा तथा प्रजा, हेतु धर्म स्तु जया आदि। तो साम्य मूलक समीकृत वाक्य हैं तथा एक तो चोरी फिर सीना चोरी, कहाँ राजा भोज और कहाँ कंगला तेली, दूध का दूध और पानी का पानी आदि वैषम्य मूलक समीकृत वाक्य हैं। तीसरा आवर्तक वाक्य, जिन वाक्यों के अंतर्गत वक्ता या लेखक पहले तो श्रोताओं एवं पाठकों के अंतर्गत उत्सुकता जगाया करते हैं और पर्याप्त प्रतीक्षा के उपरांत अंत में अपने मंतव्य को प्रकट करते हैं उन्हें आवर्तक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों का प्रयोग नेताओं तथा उपदेशकों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में दूध की नदियाँ फिर से बहने लगें, यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में उद्योग धंधों की अत्यधिक वृद्धि हो, यदि हम चाहते हैं कि हमारे सभी देशवासी समान रूप से संपन्न एवं समृद्ध हों, और यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश विश्व के अन्य समृद्ध राष्ट्रों के सामने गौरव के साथ सर ऊंचा उठाकर खड़ा हो सके, तो हमें पारस्परिक भेदभाव को मिटाकर सम्मिलित प्रयत्न द्वारा अपने राष्ट्र को सुसंपन्न बनाना चाहिए। वाक्य परिवर्तन की दिशाएं, जैसे जैसे भाषाएं उत्तर उत्तर विकास की ओर अग्रसर होती हैं वैसे ही वैसे उनके वाक्यों में भी नाना प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। वाक्य परिवर्तन संबंधी प्रायः सभी भाषाओं में देखे जाते हैं जिनका मूलतः संबंध वाक्य रचना से होता है। इन वाक्यों पर समसामयिक विदेशी भाषाएं भी अपना प्रभाव डाला करती हैं, और जब मानवों की मनोवृत्ति नए नए आविष्कारों की ओर अग्रसर होती है तब यह वाक्यों में भी नवीनता लाने का प्रयास किया करती हैं। इस तरह वाक्यों में अद्भुत परिवर्तन आ जाया करते हैं। वाक्य परिवर्तन की प्रमुख दिशाएं 10 होती हैं। पहला पदक्रम संबंधी परिवर्तन, आजकल पदक्रम को बदलकर वाक्य लिखने या बोलने की प्रथा अत्यधिक बढ़ती चली जा रही है। हिंदी के कई लेखक पदक्रम को बदलकर वाक्य लिखने में ही कहीं अधिक गौरव का अनुभव करते हैं, जैसे पहले प्रायः यह लिखा जाता है कि यह वस्त्र मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी है, या इस दुकान पर पुस्तक मात्र मिलती है, परंतु अब मात्र मनुष्य या मात्र पुस्तक जैसे प्रयोगों की बाढ़ आ गई है, और प्रायः यही लिखा जाता है कि यह तो नेताजी का मात्र कथन है आदि। ऐसे ही पहले एक रेशम का रुमाल, एक धूर्त की कहानी, एक दिल्ली का बादशाह, एक रात की दुल्हन, मैं उसके सामने रहता हूँ जैसे प्रयोग चलते थे, किंतु आजकल पदक्रम बदल कर क्रमशः एक रुमाल रेशम का, एक कहानी धुर्त की, एक बादशाह दिल्ली का, दुल्हा एक दुल्हन एक रात की। मैंने कई विस्थापित केंद्र देखे त्रिपुरा में, असम में। मैं रहता हूँ उसके सामने। कैसा प्रभावशाली था उनका व्यक्तित्व। सामने देख रहे हैं न कपोत गंगा नदी को, जैसे प्रयोग चल पड़े जो पदक्रम संबंधी परिवर्तन के कारण वाक्य परिवर्तन की ओर संकेत कर रहे हैं। दूसरा, अन्वय संबंधी परिवर्तन। संस्कृत भाषा में प्रायः यह प्रवृत्ति विद्यमान है कि वहाँ कर्ता के अनुरूप विशेषण का प्रयोग होता है और कर्ता के वचन तथा पुरुष के वचन में क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे सुंदर बालक गच्छति। इस वाक्य में सुंदर विशेषण का प्रयोग कर्ता बालक के अनुरूप हुआ है और गच्छति क्रिया भी कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुरूप प्रयुक्त हुई है। हिंदी में भी कुछ दिनों तक तो विशेषण का प्रयोग कर्ता के अनुरूप ही होता रहा, जैसे रमणीया बालिका, रमणीय पुरुष, गुणवती कन्या, गुणवान बालक आदि। परंतु अब धीरे धीरे संबंध को तोड़ दिया गया और आजकल ये कई विशेषण स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग कर्ता के लिए प्रयुक्त होने लगा, जैसे सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर दृश्य, सुंदर नदी आदि। ऐसे संस्कृत में तो क्रिया का प्रयोग केवल पुरुष और वचन के अनुसार ही होता था, परंतु हिंदी में एक कदम और बढ़ाकर क्रिया का प्रयोग कर्ता के पुरुष और वचन ही नहीं अपितु लिंग के अनुसार भी होने लगा। जैसे संस्कृत में तो रामा गच्छते, सीता गच्छते दोनों वाक्यों में एक ही जैसी क्रिया प्रयुक्त है, परंतु हिंदी में राम जाता है और सीता जाती है जैसे प्रयोगों से क्रिया को कर्ता के लिंगानुसार बदल जाना पड़ता है। तीसरा, उपवाक्य संबंधी परिवर्तन। पहले हिंदी में प्राय उपवाक्यों का प्रयोग अलग अलग क्रियाओं के साथ अलग अलग ही होता था, जैसे आजकल मोहन दिल्ली में एक नेता हो गया है जो पहले हमारे गांव में रहता था, परंतु अब इस वाक्य को इस तरह बोला या लिखा जा सकता है, आजकल मोहन जो पहले हमारे गांव में रहता था दिल्ली में एक नेता हो गया है। ऐसे ही मदन मोहन मालवीय जो प्रयाग के एक सुप्रसिद्ध वकील थे, बनारस में विश्वविद्यालय स्थापित करने में सफल हुए। आजकल बहुत सी घड़ियाँ जो स्विट्जरलैंड की बनी हैं ठीक समय नहीं देती। बहुत से विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं आजकल वहाँ पढ़ने नहीं अपितु उधम मचाने के लिए ही प्रवेश लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो भारत की एक महान विभूति थे, नित्य प्रति देश की उन्नति के बारे में ही सोचते रहते थे। महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू जो कि पाकिस्तान भारत में प्रथम प्रधानमंत्री थे अत्यंत प्रिय थे। चीनी सैनिक इतनी विशाल संख्या में इस्तेमाल किए गए थे कि आक्रमण जिसकी एक के बाद एक लहर आती थी कभी समाप्त होना प्रतीत नहीं होता था आदि आदि वाक्यों के परिवर्तित रूप उपवाक्य संबंधी परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रचलित हो गए हैं। चौथा, निकटस्थ अवयव संबंधी परिवर्तन। आजकल निकटस्थ अवयवों की सम्यक जानकारी न होने के कारण अथवा उनका प्रयोग मनमाने ढंग से करने के कारण भी अनेक वाक्यों में परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे हिंदी साहित्य का भारतीय संस्कृति के विकास में योगदान सर्वथा सराहनीय है, यह वाक्य दोषपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, भारतीय संस्कृति के विकास में हिंदी साहित्य का योगदान सर्वथा सराहनीय है। उक्त वाक्य में हिंदी साहित्य का और योगदान दोनों निकटस्थ हुए हैं, परंतु पहले वाक्य में इन्हें बहुत दूर लिखा गया था जिससे वाक्य में परिवर्तन आ गया था। ऐसे ही अनेक वाक्य आजकल पर्याप्त मात्रा में बोले और लिखे जाने लगे हैं, जैसे मजदूर नेता का अपने साथियों की सहानुभूति में आमरण अनशन चल रहा है। मैं अपनी इस पुस्तक जिसमें भाषा विज्ञान के बारे में विचार प्रकट किए गए हैं कि कुछ प्रतियां अमेरिका भेज रहा हूँ। मेरे कार्यालय में कर्मचारी जो कल हड़ताल पर थे आज मालिकों से बहुत साधन ऐंठ रहे हैं। यह ग्रंथ सुशीला जिसकी आज केवल स्मृति शेष रही है उसने यह समर्पित है। आदि आदि वाक्य निकटस्थ अवयवों के उचित प्रयोगों के अभाव के कारण ही परिवर्तित दिखाई देते हैं। पांचवा, रेखिका चिन्ह या डैश संबंधी परिवर्तन। आजकल वाक्यों के मध्यवर्ती किसी शब्द का स्पष्टीकरण करने के लिए डैश या रेखिका चिन्ह का प्रयोग करने के लिए एक उपवाक्य लिखने की प्रथा चल पड़ी है जिससे वाक्य के अंतर्गत अद्भुत परिवर्तन हो जाता है। एक तो इस रेखिका चिन्ह या डैश का प्रयोग कहीं कहीं एक शब्द की व्याख्या के लिए होता है, जैसे आवश्यकता इस बात की है कि इन संस्थानों को सभी संबंध पक्षों, सहयोगी बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं, सरकारों, राजनीतिज्ञों, व्यावसायिक संस्थानों, शिक्षण एवं शोध संस्थानों आदि का सहयोग मिलना चाहिए। इस वाक्य में संबंध पक्षों को स्पष्ट करने के लिए या इसकी व्याख्या करने के लिए डैश के द्वारा फिर उपवाक का प्रयोग हुआ है। दूसरे, कहीं पर किसी कथ्य या मूल बात के भेद प्रभेदों को समझाने के लिए रेखिका चिन्ह या डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे, बैंक राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य थी देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नियंत्रित करना और राष्ट्रीय नीति के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति में अधिक सहयोग देना। तीसरे, कहीं कहीं पहले कई बात का ही या पुनः स्पष्टीकरण करने के लिए डैश युक्त वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। जैसे, पर वह जो बीत गया जो नहीं रहा वह कैसे फिर आएगा। लो यह हरी भरी धरती, यह सवत्सा काम धेनु मैंने तुम्हें दी। यह बीड़ा उत्तराखंड के गिरिर प्रांत से घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं व्रतधारी बहुत समय पहले आई थी आदि। चौथे, कहीं कहीं छूटे हुए वाक्य को पुनः लाने के लिए भी डैश या रेखिका चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे, जो प्यार कहा था तुमने ही है सार तत्व जीवन का, मैं उदग्र ही बना रहूं कि जाने कब वो मुझे सोख ले आदि। इस प्रकार वाक्य में डैश या रेखिका चिन्हों से संबंधित भी अद्भुत परिवर्तन देखे जाते हैं। छठा, लघु कोष्टक संबंधी परिवर्तन। आजकल ऐसे वाक्यों के लिखने की प्रथा चल पड़ी है जिनके मध्य लघु कोष्टकों के अंतर्गत कोई भी ऐसा अपवाद विद्यमान रहता है जो मुख्य वाक्य में वर्णित किसी तथ्य या बात को स्पष्ट करने के लिए लिखा जाता है तथा उसे लेखक मुख्य वाक्य में तो लिखना नहीं चाहता किंतु तो जिसकी सूचना वह अपने पाठकों को देना चाहता है वह आवाज समझता है। जैसे, वह युवती स्लीवलेस ब्लाउज व साड़ी में थी और उसके बगल में बैठे सिख वेश धारण किए हुए लतीफ़ मियाँ चुप थे। अख्तर का महामारी खर्च गुप्त रूप से दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास देता था। आदिम मनुष्य के वे छोटे छोटे वर्ग या समाज थे और उनमें आपस में प्रारंभिक भावनाओं जैसे भूख प्यास कामेक्षा रक्षा आदि से संबंध को एक दूसरे का पर अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर तरह तरह के संपर्क स्थापित किए जाते थे। इसी प्रकार करतल ध्वनि, हाथ हिलाकर संकेत करना जैसे पास बुलाना, दाएं बाएं हटने या कहीं भेजने आदि के लिए, चुटकी बजाना, उंगली दिखाना आदि अनेक प्रकार के साधनों द्वारा हमारे में विचार विनिमय का कार्य चलता है आदि। इस तरह वाक्य में लघु कोष्ठकों से संबंधित परिवर्तन भी देखा जाता है। सातवां, पद या प्रत्यय लोप संबंधी प्रत्यय परिवर्तन। कभी कभी वाक्य अंतर्गत पदों या प्रत्ययों का लोप हो जाता है और इस लोप के कारण वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। जैसे, मैंने आँखों से देखी घटना आपको सुनाई है के स्थान पर प्रायः मैंने आँखों देखी घटना आपको सुनाई है बोला एवं लिखा जाता है पर यहाँ पर से का लोप हो गया है। ऐसे ही कानों से सुनी बात में विश्वास नहीं करना चाहिए के स्थान पर कानों से सुनी बात में विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मैं नहीं जाता हूँ के स्थान पर मैं नहीं जाता मैं इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता हूँ के स्थान पर मैं इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता। वह आजकल कुछ नहीं बोल सकता है के स्थान पर वह आजकल कुछ बोल नहीं सकता। गया हुआ वक्त बीत कर फिर लौटता नहीं के स्थान पर गया वक्त फिर लौटता नहीं। मैं खा रहा हूँ के स्थान पर मैं नहीं खा रहा। वह उठेगा बैठेगा नहीं के स्थान पर उठेगा बैठेगा नहीं। सब अपने अपने काम में लग गए के स्थान पर सब अपने अपने काम लगे। वह कंबल लेकर गेह गुफा की ओर चला गया के स्थान पर वह कंबल लेकर गेह गुफा को चला गया। यह बीड़ा मेरी गोंद में रखी है के स्थान पर यह बीड़ा मेरी गोंद रखी है। मैं ही तो तेरी गोंद में बैठा हुआ मोद भरा बालक हूँ के स्थान पर मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूँ आदि वाक्य बोले एवं लिखे जाने लगे हैं जो विविध पदों विभक्तियों प्रत्ययों आदि के द्वारा परिवर्तन की सूचना देते हैं। आठवां, प्रत्येक पदों के प्रयोग द्वारा परिवर्तन। कतिपय वाक्यों में आजकल ऐसे अनेक अधिक पदों का प्रयोग मिलता है जो अर्थ की दृष्टि से अनर्थक एवं अनुपयुक्त होते हैं किंतु उनसे वाक्य में परिवर्तन हो जाता है। जैसे, दरअसल आजकल पाकिस्तान अपने गृह कलह से दुखी है के स्थान पर दरअसल में आजकल पाकिस्तान अपने गृह कलह से दुखी है। दर हकीकत श्याम बीमार है के स्थान पर दर हकीकत में श्याम बीमार है। क्या आप मुझे बुला रहे हैं के स्थान पर क्या आप मेरे को बुला रहे हैं क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? क्या स्थान पर क्या आप मेरे से कुछ कहना चाहते हैं? मोहन को न तो प्रेम में सफलता मिली और न व्यापार में। क्या स्थान पर मोहन को न तो प्रेम में सफलता मिली और न व्यापार से मिली। सुरेश न तो पढ़ने में अच्छा है और न खेलने में। क्या स्थान पर सुरेश न तो पढ़ने में ही अच्छा है और न खेलने में ही अच्छा है। कृष्ण बंसी बजाते और गाय चराते थे। क्या स्थान पर कृष्ण बंसी बजाते थे और गाय चराते थे। हमें अपने राष्ट्रीय आय की वृद्धि और देश की समृद्धि करनी चाहिए। क्या स्थान पर हमें अपनी राष्ट्रीय आय की वृद्धि करनी चाहिए और देश की समृद्धि करनी चाहिए आदि। ऐसे वाक्यों का प्रचार हो गया है जिसमें अधिक पदों का प्रयोग किया जाता है और इन प्रयोगों से वाक्य परिवर्तित हो जाते हैं। नवा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन संबंधी परिवर्तन। आजकल हिंदी में कतिपय ऐसे वाक्यों का भी प्रयोग होने लगा है जो प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में बदल जाने के कारण अंग्रेजी की भांति लिखे जाते हैं, जैसे जबकि पहले दोनों स्थितियों में एक साथ लिखा जाता है। जैसे राम ने कहा कि आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा। वाक्य को जब राम ने कहा कि आज वह मेरे घर आएगा, श्याम ने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ को अब श्याम ने कहा कि वह खाना खा रहा है। सोहन कहता है कि मैं बीमार हूँ को अब सोहन कहता है कि वह बीमार है। कमला बोली कि मैं गलती पर हूँ को अब कमला बोली कि वह गलती पर थी। राम ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बात ठीक है को अब राम ने मुझसे कहा कि मेरी बात ठीक थी। सीता बोली कि चाय तैयार है को अब सीता बोली कि चाय तैयार थी। वह बोला कि मैंने पाठ याद कर लिया है को अब वह बोला कि उसने पाठ याद कर लिया था। नेताजी ने कहा कि मैंने देश के लिए सर्वस्व त्याग दिया है को अब नेताजी ने कहा कि उन्होंने देश के लिए सर्वस्व त्याग किया था आदि लिखा जाने लगा है। इस तरह के प्रयोगों के फलस्वरूप हिंदी के वाक्यों में परिवर्तन दिखाई देता है। दसवां, आदर हेतु बहुवचन के प्रयोग का द्वारा परिवर्तन। आजकल संस्कृत तथा फारसी के प्रभावित होकर हिंदी में भी आदर करने के लिए एकवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया, वर्तमान, सर्वनाम आदि का प्रयोग होने लगा है। इससे वाक्य का व्याकरणिक ढांचा परिवर्तित हो जाता है और वाक्य भी बदल जाता है। जैसे राम वन को गया के स्थान पर राम वन को गए। श्री कृष्ण बंसी बजाता था के स्थान पर श्री कृष्ण बंसी बजाते थे। मेरा पिता आता है के स्थान पर मेरे पिताजी आते हैं। हमारा अध्यापक जा रहा है के स्थान पर हमारे अध्यापक जी जा रहे हैं। हमारा प्रिंसिपल बोल रहा है के स्थान पर हमारे प्रिंसिपल बोल रहे हैं आदि वाक्यों का प्रयोग होता है, जिनमें स्पष्ट ही एक वचन के कर्ता के लिए एक वचन की क्रिया के स्थान पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही हिंदी में आदर देने के लिए बहुवचन के सर्वनामों का प्रयोग होता है। जैसे श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुआ था, वह गायें चराया करता था और उसने कंस को मारा था के स्थान पर हिंदी में श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए थे, वे गाय चराते थे और उन्होंने कंस को मारा था। इतना ही नहीं, कुछ लेखक महापुरुषों के लिए सर्वनाम तो एकवचन का प्रयोग किया करते जबकि उन्हें आदर देने के लिए बहुवचन की क्रियाओं को अपनाया करते हैं। जैसे वह आ रहे हैं, वह भाषण दे रहे हैं, वह पदयात्रा कर रहे हैं, वह उद्घाटित कर रहे हैं आदि। इन वाक्यों में सर्वत्र वे के स्थान पर वह एकवचन सर्वनाम का प्रयोग हुआ है और सभी क्रियाएँ बहुवचन की हैं। इस प्रकार आदरार्थ बहुवचन के प्रयोग से भी वाक्यों में परिवर्तन हो जाते हैं। वाक्य परिवर्तन के कारण। प्रत्येक भाषा के वाक्यों की रचना में प्रायः परिवर्तित होते रहते हैं। वैसे भी परिवर्तन होना नितांत नैसर्गिक है, क्योंकि युग के साथ साथ जब सभी बातें परिवर्तित होती रहती हैं तब भाषा के वाक्यों में परिवर्तन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु परिवर्तन किसी न किसी कारण से हुआ करते हैं और वाक्य संबंधी परिवर्तन के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला, प्रयत्न लाघव। सभी प्रकार के भाषागत परिवर्तनों का प्रमुख कारण प्रयत्न लाघव होता है, क्योंकि मानव की यह सहज प्रवृत्ति देखी जाती है कि वह कम से कम प्रयत्न द्वारा अधिक से अधिक कार्य करना चाहता है और अपनी इस प्रवृत्ति के कारण वह छोटे से वाक्य का उच्चारण करके अथवा कम से कम पदों का वाक्य में लिख कर अपने अभिष्ट मंतव्य को व्यक्त कर देना चाहता है। इसका प्रयत्न यह होता है कि वह कभी कभी तो एक ही शब्द या पद के वाक्य का प्रयोग करता है और कभी कभी पदक्रम को उलट कर आवश्यक पदों द्वारा अपनी बात व्यक्त करता है। अतः एक पद वाले वाक्य एवं पद क्रम के रटने से बने वाक्य में जो परिवर्तन दिखाई देता है अथवा पदलोप एवं प्रत्येक विभक्ति लोप संबंधी जो भी परिवर्तन वाक्य में दिखाई देते हैं उन सभी का मूल कारण प्रयत्न लाघव होता है। दूसरा, अनुकरण। बहुत से वाक्यों में परिवर्तन इसलिए हुआ करते हैं कि वक्ता एवं लेखक दूसरी भाषाओं में प्रयुक्त वाक्यों का अनुकरण किया करते हैं और अपनी अपनी भाषा में उसी प्रकार के वाक्यों के बोलना एवं लिखना आरंभ कर देते हैं जिस प्रकार के वाक्य वे किसी अन्य समृद्ध एवं प्रसिद्ध भाषा में देखते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के वे वाक्य लिखे जा सकते हैं जो प्रत्यक्ष कथन होने के कारण उल्टे अर्ध विराम चिन्हों के मध्य लिखे जाते हैं। इन वाक्यों का अनुकरण आजकल हिंदी भाषा में इतना अधिक होने लगा है कि पहले जिस तरह प्रत्यक्ष कथन संबंधी वाक्य लिखे जाते थे आज नहीं लिखे जाते। अब तो उल्टे अर्धविराम चिन्हों के अंतर्गत पहले प्रत्यक्ष कथन को दिया जाता है और तदुपरांत वक्ता और उसकी बात का उल्लेख किया जाता है, जबकि हिंदी में पहले वक्ता की बात का उल्लेख किया जाता था और उसी के साथ उसका प्रत्यक्ष कथन भी रहता था। जैसे राम ने गंभीर होकर कहा कि लक्ष्मण आजकल वन में राक्षसों का उत्पात बढ़ गया है। पहले इस प्रकार के वाक्य हिंदी में लिखे जाते थे परंतु आजकल अंग्रेजी वाक्यों के अनुकरण पर ही यही वाक्य इस तरह लिखा जाने लगा है। लक्ष्मण आजकल वन में राक्षसों का उत्पात बढ़ गया है, राम ने गंभीर होकर कहा। मुझे अच्छी तरह ज्ञात है, लक्ष्मण बोले। तीसरा, अन्य भाषा का प्रभाव। जहाँ बहुत से वाक्यों में अनुकरण के कारण परिवर्तन हो जाता है वहाँ बहुत से वाक्य दूसरी भाषाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से व्यक्ति जिस भाषा को अधिक जानते हैं या जिस भाषा में रात दिन सोचते विचारते हैं उसी भाषा की वाक्य रचना के अनुसार दूसरी भाषाओं में बोलने लिखने में अपने विचार प्रकट किया करते हैं। इसका ज्वलंत प्रमाण यह है कि हमारे देश में बहुत से विद्वान अंग्रेजी भाषा के धुरंधर पंडित हैं और वे रात दिन अंग्रेजी में सोचते विचारते अंग्रेजी में बोला करते हैं। यदि उन्हें कभी हिंदी में बोलना सीखना पड़े तो उनकी हिंदी वाक्य रचना पर अंग्रेजी वाक्य रचना का शासन करती और वे अंग्रेजी के वाक्यों की भांति हिंदी में भी वाक्य बोलने लिखने लगते हैं। उनका यह कार्य बिना जाने बूझे एवं बिना सोचे समझे ही होता है, इसके लिए उनके द्वारा परिवर्तित वाक्यों के उच्चारण एवं लेखन को अनुकरण न कहकर दूसरी भाषा का प्रभाव मानना पड़ेगा। अनुकरण में तो वक्ता या लेखक जानबूझकर किसी भाषा की कोई पद्धति अपनाता है किंतु प्रभाव अनजाने में ही पड़ता है। इसलिए प्रायः अंग्रेजी में सोचने विचारने वाले विद्वान वक्ता हिंदी में इस प्रकार के वाक्य बोले एवं लिखे देखे जाते हैं। जैसे वस्तुतः देश को आज आवश्यकता है रोटी की, आवास की, वस्त्रों की और उससे अधिक सुरक्षा की। कैसा प्रभावशाली था उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व और उनका जीवन। हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं, देश की, विदेश की, सुरक्षा के, शरणार्थियों की आदि। चौथा, स्पष्टता। बहुत से वाक्य परिवर्तनों का कारण यह भी है कि हम अपनी बात को अधिक से अधिक स्पष्ट करने के लिए एक वाक्य में नहीं कहते अपितु कई उपवाक्यों में कह सकते हैं और अपने श्रोता पाठक पूरी तरह से समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं। हमारी इस मनोवृत्ति के कारण एक ही वाक्य में कई उपवाक्य आ जाते हैं। जैसे हम उपवाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं चाहे तब रेखिका चिन्हों का प्रयोग उनके द्वारा अपनी बात कहा करते हैं। इस वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। इतना ही नहीं बल्कि हृदय संबंधी वाक्य परिवर्तनों के कारण भी हमारी कुटी स्पष्टता लाने हमारी यही स्पष्टता लाने की मनोवृत्ति होती है और लघु कोष्ठक संबंधी वाक्य परिवर्तन भी इसी कारण हुआ करते हैं। पांचवा, ध्वनि विकास। किसी भी भाषा का जैसे जैसे विकास होता है वैसे उसमें अनेक नई नई ध्वनियाँ विकसित होती हैं और प्रायः संयोगात्मक भाषाएं विकसित होते होते व्युगात्मक हो जाती हैं। जब तक कोई भाषा संयोगात्मक अवस्था में रहती है तब तक तो उसमें पदक्रम की कोई चिंता नहीं रहती, किंतु जैसे ही वह व्युगात्मक अवस्था में पहुँच जाती है वैसे उसका पदक्रम भी निश्चित होने लगता है और फिर किसी पद को किसी भी स्थान पर नहीं रखा जा सकता। जैसे संस्कृत संयोगात्मक भाषा है अतः उसमें सभी पद विभक्ति युक्त होते हैं और उनको किसी भी क्रम में रखा जा सकता है, परंतु हिंदी में एक व्योगात्मक भाषा है अतः यहाँ पद क्रम निश्चित रहता है और यदि पद क्रम बदल जाएगा तो इस वाक्य में भी परिवर्तन नहीं होगा अपितु उसके अर्थ में ही परिवर्तन हो जाएगा। जैसे शेर बकरा खाता है और बकरा शेर खाता है, इन दोनों वाक्यों में उनके अर्थों में केवल पदक्रम के परिवर्तन से अंतर हो जाता है। अतः सिद्ध है कि जब तक ध्वनियों का अधिक विकास नहीं होता और भाषा संयोगात्मक अवस्था में रहती है, तब तक उसके वाक्यों में पदक्रम का कोई महत्व नहीं रहता। किंतु जैसे ही ध्वनियों का विकास हो जाता है और कोई भाषा संयोगात्मक हो जाती है, वैसे ही उसकी वाक्य रचना भी परिवर्तित हो जाती है और उसके वाक्यों में पदों के स्थान निश्चित हो जाते हैं। छठा, मानसिक स्थिति। बहुत से वाक्य परिवर्तनों का कारण वक्ता या लेखक की मानसिक स्थिति भी होती है, क्योंकि वक्ता या लेखक की मानसिक स्थिति जैसे जैसे परिवर्तित होती रहती है, वैसे ही वैसे उसके वाक्य में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कोई विद्वान एवं कवि शांति के क्षणों में कई भाषण देता है या कोई की लेख लिखता है, तो उसके वाक्य अधिकाधिक अलंकृत, लाक्षणिक, उक्ति वैचित्रपूर्ण एवं कवित्वमय होते हैं। किंतु वही विद्वान यदि आपात स्थिति में या संघर्ष के क्षणों में कुछ बोलता या लिखता है, तो उसके वाक्य अधिक सरल, सीधे और प्रवाहयुक्त होते हैं। इतना ही नहीं, यदि वही वक्ता अशिक्षित ग्रामीणों के मध्य कुछ बोलने कड़ा होता है, तो उसके वाक्य में भी सरलता के साथ साथ पुनरावृत्ति भी अधिक होती है, क्योंकि वह एक ही बात को भिन्न भिन्न प्रकार समझाता हुआ कहता है। अतः वाक्य परिवर्तन में वक्ता या लेखक की मानसिक स्थिति का भी अत्यधिक हाथ रहता है। सातवां, बलाघात। बहुत से वाक्य बलाघात के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई वक्ता किसी विशेष पद पर बल देकर उसे सर्वप्रथम कहना चाहता है या किसी पद को क्रिया के साथ विशेष बल देकर बोलता है, तब पदक्रम संबंधी अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे जाना क्या निश्चित है, या जाने के कार्यक्रम पर बल दिया गया है। खाना खा लिया क्या, यहाँ खाने की क्रिया पर बल है। घर जा रहे हो क्या, यहाँ घर जाने क्रिया पर बल है। उसे लाठी से मैं मारूंगा, यहाँ मारने क्रिया पर बल है। उक्त वाक्य में जो पदक्रम संबंधी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, उसका मूल कारण बलाघात है, क्योंकि इनमें वक्ता जिस क्रिया पर बल देना चाहता है, उसे या तो वो पहले कह रहा है या उसे अंत में कर्ता के साथ बोल रहा है। आठवां, नवीनता। बहुत से वाक्य परिवर्तन लेखक, वक्ता, कवि या कलाकार के द्वारा नवीनता के प्रति आग्रह होने के कारण हुआ करते हैं। आजकल हिंदी के लेखकों में जो नए नए प्रयोग दृष्टिगोचर होते हैं, उनका मूल कारण यह नवीनता की मनोवृत्ति है। पदक्रम संबंधी अधिकांश परिवर्तनों के कारण तो यह नवीनता ही है, क्योंकि इसी के परिणामस्वरूप हिंदी के लेखक मानव मात्र के स्थान पर मात्र मानव, एक रात की दुल्हन के स्थान पर दुल्हन एक रात की, एक बंदरगाह की कहानी के स्थान पर एक कहानी बादशाह की लिखते हैं। इतना ही नहीं, इसी नवीनता की झोंक में आजकल बिना क्रिया एवं कर्ता के वाक्यों का प्रचार पड़ रहा है। जैसे कैसा प्रभावशाली था उनका व्यक्तित्व, हल्का श्याम वर्ण, दाढ़ी मूंछ साफ, सौम्य मुखमंडल, आंखों में सुर्खी, होठों पर मुस्कान, वाणी में माधुर्य आदि आदि। नौवां, भावुकता। कतिपय वाक्य परिवर्तनों के कारण भावुकता भी होती है, क्योंकि बहुत से भावुक वक्ता या लेखक जब कुछ बोलने या लिखने लगते हैं, तब वे भावनाओं में ऐसे बह जाते हैं कि उन्हें कर्ता क्रिया आदि के युक्त वाक्य रचना की पद्धति का स्मरण ही नहीं रहता, और वे भावावेश में आकर अद्भुत वाक्य बोला या लिखा करते। जैसे वाहरे सौंदर्य, वाहरे माधुर्य, कमनीयता एवं सुंदरता का क्या ठिकाना, ऐसी चारुता, ऐसी मधुरता, आश्चर्य है, कितना लामड़। दसवां, अज्ञान। कतिपय वाक्य परिवर्तन अज्ञान या शिक्षा के कारण भी होते हैं। जैसे दरअसल के स्थान पर दरअसल में, दर हकीकत के स्थान पर दर हकीकत में, मुझसे के स्थान पर मेरे से, मुझको के स्थान पर मेरे को, अहिंसा एक शस्त्र है के स्थान पर अहिंसा एक शत्रु है, हम सहस्त्र धारा देखने गए थे के स्थान पर हम सहस्त्र धारा देखने गए, सभी छात्र यहाँ एकत्रित होंगे के स्थान पर सभी छात्र यहाँ एकत्रित होंगे, मेरी भोजन की इच्छा है के स्थान पर मेरी भोजन की इच्छा है, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा के स्थान पर मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा आदि जो पद एवं वाक्य बोले और लिखे जाते हैं, उनका मूल कारण ज्ञान एवं शिक्षा है। इसी के कारण भी वाक्यों में पर विविध प्रकार के पद संबंधी परिवर्तन हो जाते हैं। ग्यारहवां, परंपरा। वाक्य परिवर्तन में परंपरा का भी अत्यधिक हाथ रहता है। साधारणतः भाषाओं के वाक्य अपनी पूर्ववर्ती भाषाओं में बहुत कुछ काव्यगत विशेषताएं ग्रहण कर लिया करते हैं और उनके अनुसार नवीन विकसित भाषाओं में बोले और लिखे जाने लगते हैं। जैसे हिंदी से पूर्व अपभ्रंश भाषाओं में द्विवचन एवं नपुंसक लिंग का प्रत्याग कर दिया था, अतः अपभ्रंश भाषाओं की परंपरा में विकसित हिंदी भाषा ने भी अपने वाक्य में द्विवचन एवं नपुंसक लिंग का आविष्कार कर दिया, क्योंकि यहाँ द्विवचन वाले शब्द बहुवचन प्रयुक्त होने लगे तथा नपुंसक लिंग वाले पहले शब्द पुल्लिंग हो गए और कुछ स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने लगे। इसी तरह संस्कृत के समान आदरार्थे बहुवचनम के स्थान पर आदर देने के लिए एकवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होने लगा, जैसे महात्मा गांधी आ रहे हैं, श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए थे, रामचंद्र जी अयोध्या में राज्य करते थे आदि। इतना ही नहीं, पहले एक वचन के सर्वनाम के साथ आदर देने के लिए बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता था, जैसे प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम उपन्यासकार थे और वह बनारस के समीप रहते थे, अथवा प्रसाद बनारस के निवासी थे और वह सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। परंतु अब आदर देने के लिए सर्वनामों का प्रयोग बहुवचन में होने लगा, जैसे प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम उपन्यासकार थे और वे बनारस के समीप रहते थे, अथवा प्रसाद बनारस के निवासी थे और वे सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। इतना नहीं, आज तो अपने को आदर देने के लिए लोग अपने लिए एक वचन मैं के स्थान पर बहुवचन हम का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ के स्थान पर हम जा रहे हैं आदि कहते हैं। इस प्रकार परंपरा भी वाक्य में विविध प्रकार के परिवर्तन प्रस्तुत किया करती है।